Шидэж. Шидэж. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में विश्व भर के समस्त हिंदी प्रेमी श्रोताओं को डॉक्टर संयुक्ता भवन रामसरा का स्नेहमय नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं वह है हिंदी की भक्ति कालीन कविता के वैश्विक आयाम, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनको हार्दिक नमन है और उनका क्षितिज कार्यक्रम में भव्य स्वागत करते हैं। प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र सन 1984 से हिंदी प्राध्यापक के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवारत रहीं। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में 3 काव्य संग्रह, 15 कहानी संग्रह, 7 आलोचनात्मक पुस्तकें और अनेक संपादित पुस्तकें उपलब्ध हैं, तथा संप्रति विविध विषयों पर प्रकाशनार्थ अनेक पुस्तकें तैयार भी हैं। साथ ही शिक्षक दिवस पर बारंबार श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में डॉक्टर विद्योत्तमा जी सम्मानित हुई हैं। अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा विद्या भूषण से सम्मानित रही और साहित्य मंडल द्वारा सन 2018 में उन्हें हिंदी साहित्य मनीषी का सम्मान भी प्राप्त हुआ। अनेकों PhD शोधकर्ताओं का सुचारू मार्गदर्शन भी करती आ रही हैं। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र स्नातकोत्तर स्तर पर हमारी प्राध्यापिका रही और PhD स्तर पर भी हमारी शोधाचार्या रही। अतः अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि प्रोफेसर विद्योत्तमा काशी की वह ज्ञान गंगा है जो निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से, समदृष्टि से, पूर्ण तन्मयता के साथ विद्या का दान करती आ रही है। अति विनम्रता के साथ आज यह कहना चाहती हूँ कि आप में श्रेष्ठ शिक्षक तथा गुरु तुल्य शिक्षक के समस्त गुण विद्यमान हैं। तो क्षितिज के प्रिय श्रोताओं, हिंदी की भक्तिकालीन कविता के वैश्विक आयाम पर प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र के उत्तम विचारों को श्रवण करते हैं।
हिंदी की भक्तिकालीन कविता के वैश्विक आयाम पर कुछ बोलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा भी है। इसकी यात्रा बड़ी संघर्षमयी रही है। यह राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्रीय सम्मान की और राष्ट्र को भावात्मक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। इसके साहित्य ने विश्व को अपने सूत्र में सहज ही बांध लिया है। इसका भक्तिकाल वैश्विक धरातल पर देखा जाए तो जनमानस में अपनी जगह बनाता रहा है, आकर्षण का केंद्र रहा है, और वैश्विक धरातल पर भारतीयतर जगत में देखें तो इसके प्रति आकर्षण भी रहा, जिज्ञासा भी रही, और जिज्ञासा के कारण अनुसंधान भी होते रहे। कामिल बुल्के से लेकर के आज इमरे बंघा जी के देखें तो मध्यकाल और हमारा भक्तिकाल उनके शोध का विषय रहा है और वो भी उनको तन्मय करता रहा है। आज हमें इस बिंदु पर हमें पहुंचना है कि वो कौन सा ऐसा पक्ष है जिसके कारण भक्ति काल लोगों के मानस को आकृष्ट करता रहा है, जिसके जीवन के सांचे को देख करके लोग अपना सांचा बदलने का सहज ही प्रयास करते रहे हैं। तो भक्ति काल चाहे निर्गुण धारा हो चाहे सगुण धारा, दोनों धाराओं के क्या अवदान रहा है, क्या स्थापनाएं रही हैं, उसने जनमानस को कैसे प्रभावित किया, ये हमें देखना है। इसका पहला बिंदु आता है कि यह जीवन के प्रति आस्था का काव्य है, जगत के प्रति निष्ठा का काव्य है, और साकार रूप में जो प्रभु हमें दिखाई देता है निराकार ही साकार होता है, सज्जनों की पीड़ा के लिए उसका अवतरण होता है। इसलिए दोनों में भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई भगवाना। वह निराकार प्रेम से प्रकट होता है, मानव रूप में आता है हमारे संकट के निवारण के लिए, हमको प्रसन्न करने के लिए। तो यह उसका जो अवतरण है वह ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को मिटा देता है। दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले राम से हम अपने मन की सारी बातें कह सकते हैं, कृष्ण से हम सारी बातें कह सकते हैं। हाँ, जो निराकार है उससे कहने में हमको परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ केवल प्रेम का साम्राज्य है, तो अवतरण में ईश्वर का लोकरंजक रूप हमें प्रसन्न करता है, उनकी विनम्रता से हमारा साहस बढ़ता है सब कुछ कहने का, और उनके शौर्य से हमारा विश्वास दृढ़ होता है। यही कारण है कि देश विदेश में अवतरित राम और कृष्ण की लीलाओं का हम गान करते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये अवतरण का हेतु वैश्विक है, ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास को दृढ़ करता है और ऐसी डोर बना देता है कि हम उससे जुड़ते रहते हैं, सहज ही जुड़ते रहते हैं, वहाँ कोई शर्त नहीं है। दूसरा बिंदु आता है कि हिंदी का भक्ति काल संबंधों के निर्वाह का काव्य है। आज इस छीना झपटी के युग में और स्वार्थ के इस समय में संबंध स्वार्थ से बनते हैं, हिसाब किताब से बनते हैं, लेकिन भक्ति काल में संबंध की आधार भूमि प्रेम है, विश्वास है। इसलिए वहाँ खतरे उठा करके संबंधों का निर्वाह किया जाता है। भक्ति काल में देखें तो इन कवियों में ईश्वर जो है याचक को संतुष्ट करता है लेकिन भक्तों से प्रेम करता है। अगर भक्त ईश्वर से प्रेम करता है, हनुमान ईश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम पशु पक्षी भी करते हैं, उनके संकट में खड़े होते हैं, तो ईश्वर भी भक्तों से प्रेम करता है, उसने भी संबंधों का निर्वाह किया है और संबंधों के निर्वाह के लिए जोखिम उठाई है, चाहे पारिवारिक धरातल पर देखें चाहे सामाजिक धरातल पर देखें। सीता वन में राम के साथ रहती हैं और लक्ष्मण भी साथ जाते हैं, कष्ट उठाते हैं प्रेम के लिए। हनुमान कष्ट उठाते हैं प्रेम के लिए, और अगर हनुमान कष्ट उठाते हैं तो राम भी उनके ऋणी होते हैं। ये हमारी भक्तिकालीन कविता है, और हमारा ईश्वर है कि वो भक्तों का ऋणी होता है, हनुमान के ऋणी राम हैं। ये इतना आकर्षक रूप है जब राम कहते हैं कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। भगवान का तो ऋणी भक्त होता है, लेकिन जब भक्त का ऋणी ईश्वर हो जाए तो इससे सुंदर रूप जो है, इससे विश्वसनीय रूप आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो संबंधों के निर्वाह की कविता है। तीसरी बात हम देखें कि स्त्री प्रश्न, स्त्री को लेकर कई सवाल उठाए गए। राम काव्य में स्त्री अपहर्ता के लिए संघर्ष होता है, और स्त्री की अस्मिता पर जिसने चोट पहुंचाई है उस सत्ता की पूरी जड़ उखाड़ दी जाती है। कृष्ण काव्य में द्रौपदी के प्रसंग में कृष्ण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, और यही एक काव्य है कि उस पराभव काल में जब स्त्री का अपहरण हो रहा था तो स्त्री के माता रूप की, स्त्री के प्रेसी रूप की प्रतिष्ठा होती है। जसोदा हरि पालने झुला में, यशोदा का महत्व है, यशोदा ने पालन पोषण किया है, जन्म नहीं दिया है, और पालन करने वाली माता को कितना महत्व मिला, ये हमारी भक्तिकालीन कविता स्थापित करती है। परिवार की अवहेलना नहीं करती है, यहाँ परिवार की प्रतिष्ठा मिलती है। राधे श्याम ही कहा जाता है, राधा पहले हैं श्याम बाद में हैं, सीता पहले हैं राम बाद में हैं। तो स्त्री प्रश्नों को देखें तो भक्ति की स्थापना जो है, ज्ञान के प्रतीक उद्धव जो हैं वो स्त्रियों के गोपियों के प्रेम से पराजित होते हैं, अंत में उसे स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करके कहते हैं कि छाव तो कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौण रौन रेती सो कदापि करते नहीं। इतना प्रेम से प्रभावित होते हैं कि कहते हैं कि हम वहीं बस जाते। तो स्त्री प्रश्न, स्त्री की प्रतिष्ठा। उसके बाद हमारे समाज में इस समय पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं और संस्थान खुले हुए हैं। हिंदी की पूरी भक्त कविता में अरण्य संस्कृति आती है। कृष्ण जंगल में गाय चराते हैं, राम वन वन विचरण करते हैं, वन का संस्कार करते हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पर्वत हैं। चित्रकूट जो है उसको राम के कारण महत्व मिलता है, सारी स्थली तीर्थ बन जाती है। और जहाँ पर जो पशु पक्षी पेड़ पौधे ईश्वर के आगमन से प्रसन्न होते हैं, वे हमारे लिए स्मरणीय बनते हैं, तीर्थस्थली बनती है, तो उसको नष्ट करने का कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता है। यमुना प्रदूषित होती है काली नाग से, तो कृष्ण काली नाग से उसको मुक्त करते हैं, क्योंकि यमुना का जल जहरीला हो गया था। तो इसको हम इस रूप में देखें तो पर्यावरण का प्रसंग जो है बड़ा ही युगधर्मी है। युद्ध की नीति की दृष्टि से देखें कि आज साम्राज्य का विस्तार करने में देश लगे हुए हैं, लेकिन हमारी भक्तिकालीन कविता में जो युद्ध होते हैं वो मूल्यों के लिए होते हैं, स्त्री की रक्षा के लिए होते हैं और अत्याचारी के दमन के लिए होते हैं। और अत्याचारी को पहले संभलने का अवसर दिया जाता है, उसके बाद युद्ध होते हैं। तो उस युद्ध नीति में जो जीतते हैं हमारे नायक, वो राम जो है रावण की किसी संपत्ति को नहीं लेते हैं, न स्त्री को लेते हैं, न संपत्ति को लेते हैं, सारी संपत्ति उनके भाई को दे देते हैं। इसलिए साम्राज्य विस्तार की नीति, युद्ध की इस विभीषिका में हमारे नायकों की युद्ध नीति बड़ी ही अनुकरणीय है, बड़ी ही आकर्षक है। जहाँ सताए हुए लोगों की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं, लेकिन जीते हुए प्रदेश की संपत्ति को कोई ग्रहण नहीं करता है। आप देखिए कि राम जब वनवास जाते हैं तो सारा आभूषण और सारे राजसी वस्त्रों को तो उतार देते हैं, लेकिन धनुष बाण उनके हाथ में रहता है। वो धनुष बाण डराने के लिए नहीं है, बल्कि रक्षा के लिए है। किसकी रक्षा के लिए है? वो ऋषियों की। वे ऋषि जो भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों के स्थापक हैं, इसलिए ब्रजवासी कृष्ण और अयोध्यावासी राम को अपने हृदय में हम बसा सकें तो जीवन बहुत कुछ बदल जाएगा, युद्ध की विभीषिकाएँ कम हो जाएंगी, हिसाब किताब वाली दुनिया जो है वो प्रेम में बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ शत शत नमन और मैं सबको प्रणाम करती हूँ।
प्रोफेसर विद्युतमा मिश्र को उनके श्रेष्ठ विचारों के लिए कोटिशः धन्यवाद। इन गहन विचारों से यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि भक्तिकालीन साहित्य में वे सारी सामग्री उपलब्ध हैं जिनमें आधुनिक जीवन की समस्याओं का समाधान उपलब्ध है, बशर्ते उनका अध्ययन, मंथन, मनन, चिंतन कर हम उन्हें जीवन में उतारें और व्यवहार में लाएं। प्रिय श्रोताओं, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और हमारी यही शुभकामना है कि आप सभी हिंदी साधना में आगे बढ़ते रहें। सादर प्रणाम।